पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततौ। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है।
व्याख्या: यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। सातवें अध्याय के बारहवें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, पर उनमें मैं और मुझमें वे नहीं है। यहां भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने नवे अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूप से कहा है। तात्पर्य यह है कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझमें ही स्थित रहते हैं और मुझमें ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा, परंतु सोने से बने हुए गहनों के नाम रूप आकृति उपयोग तौल मूल आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा है और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे, परंतु संसार को पांच भौतिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया। पुरुष लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुष से पर कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो वह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, यह बात जची हुई है। और वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति घटना आदि के रूप में एक परमात्म तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओड़ा, बादल, बूंदे, कोरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जड़ ही है, ऐसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती है। 18वें अध्याय का 46वां विशेष बात, आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं। 8:2 जो अर्जुन का प्रश्न था वह बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है, कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात कहकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई, और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और ब्रह्मलोक की अवधि बताई, और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है, उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूप की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है, उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है, और ब्रह्म लोक की गति से मेरे लोक की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूं और सब मेरे ही अंतर्गत है। परिशिष्ट भाव, भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न रहे, सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख की सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्म लोक तक का सुख भी आकृष्ट न करे, यहां तक कि अपनी स्वाधीनता का सुख भी संतुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। उसी बात को यहाँ यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम पदों से कहा है। इसी को आगे 9वें अध्याय के 4थे-5वें श्लोकों में विस्तार से कहेंगे। इन सब का तात्पर्य एक ही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही है।